श्रद्धा और संयम। गायत्री का जाप संध्या के लिए नेम टेम और प्रेम की बात है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करता है या अपना पाठ पूजन का करता है, नियम निभाता है, वह काल को जीत सकता है। श्रद्धा प्रेम हो तो समय की पाबंदी अपने आप ही हो जाएगी, और कभी कभी यदि भगवान में विशेष प्रेम हो जाए और अपना नित्य नियम का उल्लंघन हो जाए तो ये बड़े गौरव की बात है। आपका भजन ध्यान करने का समय है, उसमें आप कुछ पाठ पूजा भी करते हो, लेकिन भगवान के ध्यान में आप इतने डूब गए कि आप अपने को भी भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, तो ये बहुत गौरव की बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। भगवान के प्रेम में नियम का उल्लंघन तो गौरव की बात है। इसका उदाहरण है विदुर जी की स्त्री। भगवान घर में आए, विदुरानी का प्रेम के कारण से होश उड़ गया, स्नान करने वाली विदुरानी जी को अपने आप का भी होश नहीं रहा। फल देते समय उनको यही ज्ञान नहीं रहा कि मैं क्या दे रही हूं। तो आज विदुरानी जी की ये बातें हृदय में कितनी असर करती है, क्योंकि उनमें प्रेम अधिक था। नेम टेम क्रिया के साथ संबंध रखते हैं, हट से संबंध रखते हैं, पर श्रद्धा प्रेम से ये चीज हो जाए तो ये भाव से संबंध रखने वाली हो सकती है। मुझे इतना नियम इस समय में करना है, ये हट से भी कर सकते हो, पर जहां श्रद्धा उमड़िया है वहां आप हट से कर लोगे, आपके हाथ की बात नहीं रहेगी। भगवान की पूजा, भगवान का स्तवन, नाम जप, स्वाध्याय, पाठ, इन सब में स्वतंत्रता है, पर सत्संग करना और परमात्मा का ध्यान होना इसमें अपनी परतंत्रता मालूम देती है। सत्संग मिले न मिले हाथ की बात नहीं, परमात्मा का ध्यान हो क्योंकि मन लगे न लगे हाथ की बात नहीं, इनमें परतंत्रता मालूम देती है। पर पूजा करनी हो तो इसमें स्वतंत्रता है, पाठ करना हो स्वतंत्रता है, नाम जप करते हैं स्वतंत्रता है। परंतु सत्संग करना और परमात्मा का ध्यान करना इसमें अपनी परतंत्रता मालूम देती है। बिल्कुल परतंत्रता तो नहीं है, परंतु कोशिश करते रहो, परतंत्रता में कमी आती रहेगी। जिसके हृदय में ज्यादा प्रेम होगा, आग्रह होगा, वो सत्संग में जाता हो उसको सत्संग मिल ही जाएगा। उसकी श्रद्धा प्रेम बलवान हो तो बढ़िया सत्संग मिल जाएगा। हम अच्छे पुरुषों को नहीं छोड़ें तो अच्छे पुरुष हमको नहीं छोड़ेंगे, ये विधान है। ईश्वर के विषय में ये भाव हो जाए कि क्या करें, बिना ईश्वर के हम रह नहीं सकते, तो ईश्वर भी आपके बिना रह नहीं सकेगा। ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ऊंची से ऊंची बात बताता हूं। ऐसे ही ध्यान की बात है। देखो ऊंची से ऊंची बात बताई कि आपा भगवान के बिना नहीं रह सका तो भगवान भी आपा ने बिना नहीं रह सके। आ बात बहुत ऊंची से ऊंची बात है और बड़े विश्वास के साथ कहूं आ बात कह रहा है। यही बात ध्यान की है। ध्यान पर आपका विश्वास हो जाए तो आप उसके बिना रह नहीं सकते, आपका ध्यान छूट नहीं सकता। भगवान के नाम स्वरूप की स्मृति अपने श्रद्धा प्रेम की भगवान के नाम और स्वरूप की विस्मृति अपने श्रद्धा प्रेम की कमी के कारण से है। फिर भजन ध्यान छूट नहीं सकता, आगे आकर इसमें भी स्वतंत्रता हो जाती है। आप कोशिश करें तो आपको इतनी स्वतंत्रता मिल सकती है कि भगवान भी आपसे मिले बिना नहीं रह सकते। नाम जप में जितनी स्वतंत्रता हम देखते हैं उतनी ध्यान में तो नहीं है, परंतु विशेष प्रयत्न करने के लिए कठिनता भी नहीं है। हमारी तो ये मान्यता है कि प्रयत्न पूर्वक किसी काम में आप लग जाओ कोई भी असंभव नहीं है। अध्यात्म मार्ग में किसी भी साधन को असंभव मानना ये भूल है। वह भगवान के अनुकूल बन जाए तो भगवान उसके अनुकूल बन जाते हैं। हनुमान जी भगवान राम के अनुकूल हो गए तो भगवान हनुमान जी के वश में हो गए। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने वश कर राखे रामू। अपत अजामिल गज गनिकाऊ भये मुकति हरि नाम प्रभाव। हनुमान जी ने नाम जप के प्रभाव से अपने वश में कर लिया, भगवान को अपने वश में कर लिया। अजामिल ने भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान ने दुर्वासा से कह दिया अहम भक्त पराधीन है। जो स्वयं भगवान के अधीन हो जाता है फिर भगवान कहां जाएंगे, उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसे कोमल है भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान ने अपने लिए कानून बनाया है। भगवान सब पर कानून बनाते हैं पर भक्त के सामने भगवान स्वयं कानून बनाकर उसमें अधीन हो जाते हैं। ये भगवान की दया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के महल में गए, हस्तिनापुर की बात है। भगवान अर्जुन के महल में थे, वहां युधिष्ठिर ने भगवान को ध्यान में डूबे हुए देखा। युधिष्ठिर ने नमस्कार किया और बैठ गए। युधिष्ठिर उनको ईश्वर समझकर नमस्कार करते थे और महाराज श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई समझकर प्रणाम करते थे। भगवान का जब ध्यान टूटा तो बड़े भाई युधिष्ठिर को देखकर भगवान खड़े होने लगे। युधिष्ठिर ने पैर पकड़ लिया, महाराज ठहरो ठहरो, मेरे मन में जिज्ञासा है, आप ये किसका ध्यान करते हैं? आप तो सारे विश्व के मालिक हैं, सारा विश्व आपके ध्यान में रहता है, आप सबके स्वामी हैं, आपसे बड़ा कौन है जिसके लिए आपको ध्यान करना पड़े? तो भगवान ने कहा सरसैया पर पड़े हुए भीष्म मेरा ध्यान करते हैं, इसलिए मुझे उनका ध्यान करना जरूरी है। आप विचार करो, किसी देश का राजा किसी दरिद्र व्यक्ति को याद कर ले तो उसका दारिद्र्य भाग जाता है। ऐसे ही भगवान हमें याद कर ले तो हमारी दरिद्रता भाग जाती है। हमारी दरिद्रता क्या है? संसार में जन्मना और मरना, ये दरिद्रता है। ये दरिद्रता है हमारी, जन्म और मरो। अंगद भगवान से विदा होने लगे तो हनुमान जी से प्रार्थना करते गए, देखो हनुमान जी आप समय समय पर भगवान को मेरी याद दिला देना, और कुछ मत करना, बस मेरा उसी में ही काम बन जाएगा। उद्धव गोपियों के पास गए तो गोपियों ने पूछा, क्या भगवान कभी हमें याद करते हैं? उद्धव ने देखा कि मैं तो इनको योग और ज्ञान का उपदेश देने आया हूं और ये तो मेरी बात सुनती नहीं है, उल्टा मुझे ही पूछने लग गई। मैं जो कहूं वो उनको सुनना चाहिए, इन गोपियों को क्या भगवान याद करेंगे? उद्धव गोपियों की बात को समझ गए, बाद में समझ गए, और फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे, महाराज आपने हमको गोपियों को योग और ज्ञान का उपदेश देने के लिए थोड़े ही भेजा था, तो महाराज अब समझा हूं कि आपने मुझे प्रेम सिखाने के लिए और प्रेम सीखने के लिए भेजा था। आप अपने बच्चों को रामायण सिखाना चाहो तो उन बच्चों से ऐसा नहीं कहे कि तुम हमसे सीखा करो, उसको ऐसा कहना चाहिए कि तुम हमें रामायण सुनाया करो। एक बात आपको और कहते हैं, आप लोग भोजन करते हो तो तीन चीज ले, ज्यादा मत ले। भोजन में सादगी रखो। जो विशेष रूप से खाने पीने में संयम रखते हैं उनके लिए सब संयम सुगम हो जाते हैं। भिक्षा लाने वाले साधुओं के लिए तो ये बात संभव नहीं है, क्योंकि वे तो जैसा मिलेगा वैसा खाएंगे, और ऐसे ही ब्रह्मचारियों पर भी लागू नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी जो भिक्षा लाते थे गुरु के अर्पण कर देते थे, और गुरु आज्ञा देता था तो वे प्रसाद पाते, और गुरु आज्ञा न दे तो नहीं लेते थे। सन्यासी के लिए ये बात है कि वह अपने सिवाय किसी के लिए अन्न न मांगे। साधुओं के लिए अधिक से अधिक सात घरों से भिक्षा मांगने का विधान है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने और साधुओं ने मिलकर के मनमाने ढंग से नियम बना लिए, परंतु देखा जाए तो साधु एवं ब्राह्मण के नियम बहुत कड़े हैं। वेश्यों को तो सब धन का खजाना सौंप दिया, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम तीनों से ही धन मिलता है, ये काम वेश्यों के सुपुर्द किया है। उत्तम ब्राह्मण तो वो बताया गया है जो कभी संग्रह न करे, यदि संग्रह करे तो अधिक से अधिक एक माह का, एक महीने तक खर्चा चले वो संग्रह करे, ज्यादा न करे। ब्राह्मण की शीलोंच वृत्ति है, दूसरी वृत्ति दान लेना और यज्ञ करना है, बिना मांगे अपने आप मिल जाए, ये दो नंबर का है। आजकल धर्म के पालन में कठिनाई है, साधु और ब्राह्मणों में दोनों में हम लोग ये कठिनाई देख सकते हैं, न तो ऐसे साधु हैं न ऐसे ब्राह्मण हैं। मौन रहने से भजन ज्यादा होता है, मौन रहो, जरूरी हो तो कोई बात कह दो, बाकी अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करो। नाम जप बड़ी महत्व की चीज है, भजन और जप की वृद्धि सत्संग से होती है। सत्संग को महत्व नहीं दिया जाए तो सत्संग करना और न करना बराबर है, क्या फायदा है? सत्संग को महत्व दो, नाम जप सब साधनों में प्रधान है। भगवान की भक्ति में कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, बिनु सत्संग न हरि कथा, तय बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद, होई न दृढ़ अनुराग। इस प्रकार से सत्संग बड़ा है। कितना बड़ा है कि सत्संग सबका दादा है, दादा, क्योंकि सत्संग से भजन साधन होता है। भजन सदा साधन की बात सत्संग से मिलती है और उसके बाद साधन होता है। तो ये सत्संग सबका दादा है। ध्यान एक नंबर है, पर ध्यान में थोड़ी पराधीनता है कि मन लगे न लगे। जब से ध्यान होता है, सत्संग में भजन की प्रशंसा सुनी जाती है, तब भजन में और नाम जप में रुचि बढ़ती है। सत्संग है ये जल सींचने की तरह है, नाम जप और ध्यान ये वृक्ष की तरह है। हमारे लिए तो जप, ध्यान और सत्संग तीनों आवश्यक है। जैसे स्थूल शरीर के लिए अन्न, जल और वस्त्र तीनों आवश्यक हैं, ऐसे जप, ध्यान और सत्संग तीनों आवश्यक है। भजन ध्यान अर्थात नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। यदि आपसे ध्यान में कुछ कठिनता मालूम देती हो तो आप अपना जप मत छोड़ो, जप करते रहो। वो जप है जिसका नाम लेते हो, वो आपका नामी उस नाम के अंदर भी विराजमान है, ऐसा मान करके नाम लेते रहो। जल और भोजन के बिना आदमी मर जाता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। उसी प्रकार केवल भगवान के नाम जप से अथवा केवल भगवान के स्वरूप के ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नियमों का पालन करो, संयम रखो, काम क्रोध आदि का आचरण हो जाए तो भोजन का त्याग करो। किसी समय आपकी संध्या समय पर नहीं हो सकी तो उस समय भोजन भी मत करो। ये आत्मदंड है, अपने आप को खुद दंड देता है, उससे बहुत जल्दी गलती निकल जाती है। किसी समय की संध्या समय पर नहीं हो सकी तो उस समय भोजन नहीं करें, ये आत्मदंड है। आत्मदंड से अपनी गलती समाप्त हो जाती है। ऐसे नियमों का पालन हो तो अच्छा है। संयम और उपवास ये दोनों तप है। गंगा आदि के किनारे किया हुआ जप तप बहुत महत्व का है। जिनके यज्ञोपवीत है वे 1000 गायत्री मंत्र का जप रोज करें तो कैसा ही पापी क्यों न हो, पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 1000 गायत्री मंत्र रोज। बड़े बड़े पापी के लिए, बड़े से बड़े पापी के लिए 3 वर्ष की अवधि है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र की 3.5 लाख माला अर्थात 3.5 करोड़ मंत्र जप लेने पर कैसा भी पापी क्यों न हो, सब पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह बात कलि संतरणोपनिषद में आई है। 3.5 करोड़ के, 3.5 करोड़ का क्या मतलब है? ये अपनी रोमावली है ना, 3.5 करोड़ की, सारे शरीर में 3.5 करोड़ की। बिना संख्या के हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम और स्वरूप का चिंतन करो। गोपियां करती थी, संयम के साथ रहो। संयम के साथ रहना ये भगवान की सेवा है। संयम तीन चीजों का होता है, मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम। मन से संसार का चिंतन न करना, भगवान का चिंतन करना, ये मन का संयम है। वाणी से किसी को भी पीड़ित नहीं करना, दुखी नहीं करना, कठोर नहीं बोलना और भगवान के नाम का स्मरण करना, ये वाणी का संयम है। और अपने शरीर की क्रिया से किसी को कष्ट न देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शरीर का संयम है। मन के संयम में बताते हैं कि मन प्रसाद है, मन प्रसाद है, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि, ये पांच चीजें हैं। मन में हरदम प्रसन्न रहो। क्या समझ के प्रसन्न रहो कि आहा, परमात्मा की मेरे पर कितनी दया है, कितनी कृपा की है, न जाने किस किस योनि में मैं भटक रहा था, वहां से भगवान ने मुझे अपने प्रयत्न से, कृपा से निकाल निकाल करके मुझे मानव शरीर में भेजा। ओहो, कितनी कृपा है। फिर भारतवर्ष में जन्म दिया, जहां भगवान के अवतार होते हैं, जहां हर दिशा में भगवान का नाम लिया जाता है, जहां संत महात्मा रहते हैं, सत्संग होता है, आस्तिक भाव की जड़ें हैं, जहां इतने मंदिर हैं, इतने तीर्थ हैं, ऐसे हिंदुस्तान में जन्म दिया, ये भगवान की कैसी कृपा हुई, ऐसा समझकर ही प्रसन्न रहो। तीसरा, हिंदू धर्म में जन्म दे दिया, ये भी कितनी ऊंची बात है। और फिर द्विजाति बना दिया, यज्ञोपवीत आदि के नियमों में हमको रखा, फिर तीर्थ जैसे गंगा जी आदि जैसे तीर्थों का सेवन मिल गया, और साधन करने के लिए सबसे बढ़िया ये कलयुग का समय मिल गया, और फिर संत महात्मा मिले, भगवत चर्चा करने का मौका मिले, ओहो, दया की तो कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे अपने पर भगवान की दया मान मान करके मन में अपार प्रसन्नता लानी चाहिए। क्या हम लोग भी इतने दुर्बल हो गए? बाहर से थोड़ी बहुत परिस्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं तो मन में खिन्नता ले आते हैं। जिस मन में भगवान की दया का प्रवाह बहना चाहिए, आनंद का प्रवाह बहना चाहिए, उसमें बाहर की घटनाओं से कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई अपयश हो गया, कोई ऐसा हो गया, इसके अंदर हम लोग मन को खिन्न कर लेते हैं। भगवान ने ये मन बनाया ही इसलिए कि हरदम प्रसन्न रहो। यदि मन नहीं बनाते तो आप प्रसन्न कैसे रह सकते थे? इसलिए भगवान ने मन जैसी चीज दी आपको प्रसन्न करने के लिए। ऐसे मन को प्रसन्न रखा करो। दूसरी बात, सौम्यत्वम माने ठंडा मिजाज रखो, चंद्रमा की तरह शीतल रहो, शांतिमय रहो, ये सौम्य स्वभाव रखो। भगवान का गुण प्रभाव, तत्व, लीला, धाम, स्वरूप, इन सब का चिंतन करते रहेंगे या निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में विचार करते रहेंगे तो आपका मिजाज भी ठंडा होगा और मौन रहने की स्वाभाविक इच्छा होगी। मौन रहने में आपको अलग से आनंद मिलेगा। आत्म विनिग्रह, अंतःकरण का निग्रह करो। भाव संशुद्धि, हृदय के भावों की शुद्धि रखो, ये मानसिक तप है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। माता पिता गुरुजन इनको प्रणाम करो, ये शारीरिक तप है। तत्वज्ञ महापुरुष को प्रणाम करो, द्विजाति देवता ब्राह्मण इनको प्रणाम करो। शरीर की पवित्रता रखो, सरलता रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अहिंसा रखो, ये शारीरिक तप होता है। सत्संग, नाम जप, परमात्मा का ध्यान, सेवा, मन इंद्रियों का संयम और स्वाध्याय और गंगा आदि का स्नान, ये सब हमारे लिए शारीरिक तप से भी ऊंची चीजें हैं। ये सभी बातें ऐसी जोरदार हैं कि श्रद्धा प्रेम करने से 2 महीने में भगवान मिल सकते हैं। श्रद्धा और प्रेम दोनों एक जाति के हैं। दोनों में से एक का भी पालन हो जाए तो एक के पालन से काम बन जाता है। श्रद्धा पूर्ण हो और प्रेम निश्चल हो तो भगवान के मिलने में समय की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 महीने की जो बात कही गई है ये हमने मध्यम श्रद्धा से कही है। मध्यम श्रद्धा हो 2 महीना लगेगा, नहीं तो 2 महीना तो बहुत लंबा है। और साधारण श्रद्धा हो तो थोड़ा अधिक समय लगेगा। वो समय परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लगता, वो श्रद्धा की पूर्णता में समय लगता है। आदमी देखते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में समय लगा। श्रद्धा रखो। देखो श्रद्धा की हम बड़ी रहस्य की बात बताते हैं। श्रद्धे यदि एक पत्थर के घर को कह दे, पत्थर के घर को ये पारस का घर है, तो श्रद्धालु को वो पारस का घर दिखेगा कि अरे ये पारस का है क्या? ये पारस का नहीं भाई, ये तो लोहे का, कंक्रीट का, सीमेंट का है। कि नहीं 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 नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, हमारे संतों ने कहा ये पारस का है, ये पारस का है सर। अरे हमने खुद ने ईंट पत्थर और ये नहीं, नहीं नहीं, ये पारस का है। कोई कितना ही समझा दे पर वो श्रद्धालु तो पारस का ही देखता है। ये एक नंबर की श्रद्धा है। पारस दिखे नहीं पर माने कि जो शक्ति पारस में है वही इस घर पत्थर के घर में है, तो यहां ये श्रद्धा 2 नंबर की हो गई। वह मान लेता है कि पारस के गुण उस घर में है। क्या पता कि हमारे श्रद्धेय पुरुष ने कहा है, तो ये 2 नंबर की श्रद्धा है। वह समझता है कि यदि ये कह दें कि ये पारस बन जाए तो पारस बन सकता है, ये 3 नंबर की श्रद्धा है। देखो कह तो दिया इन्होंने लेकिन वास्तव में तो ये पत्थर का है, पर इनके कहने के बाद ये पारस का बन सकता है, ये 3 नंबर की श्रद्धा है। साधु पुरुष है, सत्य बोलते हैं, किंतु जो कुछ मुंह से कह दे वे सत्य हो जाए, आजकल का ऐसा जमाना नहीं है। है तो ये अच्छे पुरुष, ये अच्छे पुरुष है, ये ऐसा कह देना कि ये पत्थर का है तो ये पारस का हो जाए, हो तो सकता है, पर आजकल का जमाना नहीं है। ऐसी जो भावना पैदा होती है ये मामूली सी श्रद्धा है। श्रद्धालु किस प्रकार का है ये बर्ताव से समझ में आता है। जो श्रद्धेय की रुचि के अनुसार पतिव्रता की तरह चले वो उत्तम होता है। रुचि का ज्ञान सेवा से होता है और भाव का ज्ञान पास रहने से होता है। महात्मा की रुचि का ज्ञान जब तक नहीं हो सके तब तक उनके संकेत और इशारे से काम करें। भगवान तो प्रकट में है नहीं, उनका संकेत का तो पता चलता नहीं, और महात्मा के संकेत को नहीं समझे तो क्या करें, उनकी आज्ञा के अनुसार करें। ये 1 नंबर की श्रद्धा है। श्रद्धे की आज्ञा या रुचि के अनुसार काम नहीं होने की स्थिति में श्रद्धालु छटपटाने लग जाए, व्याकुल हो जाए, यह भी 1 नंबर की श्रद्धा है। 2 नंबर की श्रद्धा में ऐसी व्याकुलता तो नहीं होती, परंतु आज्ञा पालन में हिचकिचाहट नहीं होती वरन्तु प्रसन्नता होती है। पहले नंबर की श्रद्धा में क्षण क्षण में प्रसन्नता होती थी, प्रसन्नता की लहर उठती थी। दूसरे नंबर में साधारण प्रसन्नता होती है और तीसरे नंबर की जो श्रद्धा होती है उसमें आज्ञा का पालन तो होता है, करने की चेष्टा भी करते हैं, पर अंदर से प्रसन्नता नहीं होती। यही बात आता है, क्या करें, कह दिया इसलिए करना है, बाकी हमें तो इस करने में कोई सार लगता नहीं है। करने में कहीं झंझट लगे, कहीं भार लगे, कहीं दुख लगे, कहीं मन मार करके काम करना, ये नीचे से नीचे दर्जे की श्रद्धा है। ऊंची श्रद्धा में तो आज्ञा पालन में हर वक्त प्रसन्नता होती है, और आज्ञा के विरुद्ध काम हो जाए तो मरण तुल्य दुख होता है। और मध्यम श्रद्धा में पश्चाताप होता है। तीसरे नंबर की दर्जा में आज्ञा के पालन न होने पर दुख भी नहीं होता कि नहीं के आज नहीं होता, नहीं नहीं ऐसे ऐसे चलाते हैं। इसमें एक नंबर वाले का काम तो हो सकता है, बहुत उच्च कोटि की श्रद्धा है। दो नंबर वाला जो है वो बीच का आशा है, लेकिन काम बन जाएगा। तीन नंबर की श्रद्धा वाले का काम नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा में तो बहुत घटियापन है। इससे तो अच्छा बिल्कुल जवाब दे श्रद्धा ही नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। अब उदाहरण से बताते हैं, आरुणी को धौम्य मुनि ने आज्ञा दी कि जाओ खेत पर पानी रोको, उसे आज्ञा पालन से ही ज्ञान हो गया। जबाला के पुत्र सत्यकाम ने 400 गायें लेकर 1000 होने पर वापिस आते समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु के संकेत से गायें चराने गया था, एक नंबर की बात। उपमन्यु की बात दो नंबर पर है। ये उपमन्यु भी सौम्य मुनि का शिष्य था, भिक्षा मांगकर लाता था, गुरु के सामने रखता था, गुरु उसे कुछ नहीं देते, उसे भूख लगती तो फिर मांग लाता, दोबारा जाते घर से फिर मांग लाता। गुरु ने बाद में कहा, अरे हमने तुम्हें पहली बार भिक्षा के लिए मना किया, इसका दोबारा जाके ले आओ, थोड़ा ही था, नहीं एक बार भिक्षा मांग ली, दूसरी बार नहीं जाओ। तो उपमन्यु सोचने लगा कि भिक्षा नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे। तो उसने क्या किया, भिक्षा तो लाना बंद कर दिया, परंतु गायों का दूध पीना चालू कर दिया। अब अन्न नहीं खाए, गाय का दूध पिए तो मोटा ताजा तो हो गया। गुरु ने पूछा, अरे तू भिक्षा भी नहीं लाता और तू हृष्ट पुष्ट कैसे है। उसने कहा, गुरुदेव भिक्षा तो नहीं लाता हूं, लेकिन भूख लगती है, जाकर गायों का दूध पी लेता हूँ, भरपेट दूध पीता हूँ, जब भी भूख लगती है गाय का दूध पी लेता हूँ। अरे हमारी बिना आज्ञा के, नहीं गाय का दूध तो जो है नहीं पीना चाहिए। बछड़े जब दूध पीते थे तो दूध का झाग गिरता था, तो वह जाकर के झाग पीने लग गया। गुरुजी ने पूछा, रे तू तो अभी भी हृष्ट पुष्ट है, बात क्या है कि वो झाग गिरते थे वो व्यर्थ में जमीन पर पिटते थे, मुझे भूख लगी आई, मैंने जाकर झाग पी लिए, बछड़े के मुंह से निकले वो, इसमें क्या बात हो गई गुरुजी। गुरुजी ने कहा, नहीं ये भी नहीं कहना, इससे भी बछड़े भूखे रह सकते हैं। तो फिर बाद में उसने पत्ता खा के गुजारा किया। एक दिन आग का पत्ता खा लिया, भूखा था वो, अंधा हो गया, एक कुएं में गिर गया। गुरुजी खोजने लगे, आवाज लगाई तो उस समय वो कुएं में पड़ रहा था। गुरु ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, अश्विनी कुमार आए और आकर के उपमन्यु को कहने लगे, बेटा उपमन्यु हम तुमको अमृत देने जा रहे हैं, अमृत ले लो, फिर तुम्हारे लिए ये कोई जहर असर नहीं करेगा, तुम्हारा शरीर सदा हृष्ट पुष्ट रहेगा, कुछ भी खाने की जरूरत नहीं रहेगी। उपमन्यु ने कहा कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु के अर्पण किए बिना मैं कैसे ले सकता हूं, उससे आज ये दशा हुई है। उसने गुरु के शब्दों का पालन किया, किंतु भावों का लक्ष्य का ख्याल नहीं किया। तो गुरु के वचनों का पालन करने के साथ साथ उसने अपने जीवन की भी परवाह की, यह दो नंबर की श्रद्धा थी। परंतु अंत में उसको ज्ञान हो गया तो फिर वो एक नंबर की श्रद्धा में आ गया। इससे भी नीची श्रद्धा वो होती है कि श्रद्धालु पुरुष आज्ञा में विचार करने लगता है, ये कहता है इसके ऊपर सोचो कि ये काम करें कि नहीं करें, इनके कहने में कहां स्वार्थ है, कहां और बात ऐसा विचार करना, ये तीन नंबर की श्रद्धा है। महाभारत की कथा आती है, गौतम ऋषि के चिरकारी नाम के एक पुत्र थे। गौतम की स्त्री अहिल्या ने इंद्र के साथ अनुचित काम किया तो गौतम ने चिरकारी को आज्ञा दी कि तेरी माता ने गलत काम किया है, इसलिए तू इसे तलवार से मार डाल। ऐसी आज्ञा देकर गौतम वन में चले गए। रास्ते में जाते हुए उन्हें विचार किया कि अरे स्त्री को त्याग देते तो अच्छा था, मारने की आज्ञा दी तो ये काम तो मैंने अच्छा नहीं किया। उसकी तो मां है, मैंने आज्ञा दे दी तो ये अच्छा नहीं किया। ऐसा विचार करके वो घर की ओर लौट आए तो वहां देखते हैं कि चिरकारी ने अभी तक कुछ नहीं किया, वो बैठा ही था, मारा नहीं मां को। क्यों? क्योंकि चिरकारी विचार करने लगा कि पिता की आज्ञा का पालन करें कि नहीं करें। तलवार तो हाथ में ले ली, सोचता है कि ये पिता की तो स्त्री है लेकिन मेरी ये मां है। पिता तो स्त्री को ऐसा आदेश देवे, अपनी स्त्री के लिए आदेश देवे तो वो जाने, पर मैं अपनी माता की हत्या कैसे कर सकता हूं? लेकिन मुझे पिताजी ने आज्ञा दी है और माता को मारने की आज्ञा दी है, नहीं ऐसी आज्ञा के पालन में तो मुझे विचार करना चाहिए, अब क्या करूं? ऐसे करते करते उसने सोचने समझने में देरी लगा दी और इतने में ही पिताजी आ गए। राते कहा, अरे चिरकारी तूने मां को मार दिया? कि नहीं, अभी तक मैं आपकी बात के ऊपर विचार कर रहा हूं कि करना चाहिए कि नहीं। अरे बेटा बस बस बस, मां को मत मारना, मत मार मार। आज्ञा पालन में विचार हो ये बीच की बात है, माता को मारने में प्रसन्नता नहीं है और पिता की आज्ञा का पालन भी करना चाहता था। जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी का मस्तक काटने के लिए चारों लड़कों से कहा, तीनों ने तो अस्वीकार कर दिया। चौथे थे परशुराम जी, पिता का आज्ञा का पालन किया तो परशुराम जी से वर मांगने के लिए कहा, तो कहा कि मेरी माँ जीवित हो जाए, माता को मेरे कृत्य का ज्ञान भी न हो। तो परशुराम जी से वरदान, परशुराम जी ने वरदान मांगा, माँ जीवित हो गई। चिरकारी भी यदि ऐसा कुछ कर देते तो गौतम ऋषि के प्रभाव से आगे जाने क्या होता ये तो नहीं कह सकते, परंतु पिता की आज्ञा में उन्होंने जो विलंब किया उसमें पिता ने स्वयं ने विचार कर लिया कि नहीं मारना चाहिए। तो श्रद्धा और संयम ये बहुत श्रेष्ठ बातें हैं, इनसे हमारा कल्याण में बड़ा भारी लाभ होता है।